नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों के साथ फिट इंडिया साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रायसीना हिल तक साइकिल चलाई। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश भर में 1100 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। साइकिल न केवल लोगों को स्वस्थ रखने बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी एक कारगर उपाय है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और पौध क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25% से अधिक है। वर्ष 2021 के मुकाबले 2023 में वन क्षेत्र में लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। श्री यादव ने बताया कि वन क्षेत्र के विस्तार का लक्ष्य साल 2030 तक हासिल कर लिया जाएगा।
आज CO2 इक्विवेलेंट की जो बेसलाइन 2005 में हमारी 28.414 बिलियन टन थी, आज वो इंक्रीज होकर के 2.29 बिलियन टन हो गई है। और एक लक्ष्य के हिसाब से अगर यही ट्रेंड रहता है तो 2030 में हमारा जो अचीवमेंट है 31.71, ये हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
बता दें कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। झारखंड के 19 जिलों में पिछले 2 साल के अंदर 1.91% वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 5 जिलों में वन क्षेत्र घटे हैं। जिन 5 जिलों में वन क्षेत्रों में कमी आई है उनमें चतरा, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा शामिल है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव विस्मिता तेज ने कहा कि भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। झरिया क्षेत्र में कुल 595 अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनमें से 81 क्षेत्र अति संवेदनशील हैं। उन्होंने पहले चरण में 81 अति संवेदनशील क्षेत्र के 14,000 से अधिक परिवारों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। श्रीमती तेज धनबाद में झरिया पुनर्वास की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस दौरान उन्होंने रिवाइज झरिया मास्टर प्लान को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने के संकेत दिए। बता दें कि 81 अति संवेदनशील क्षेत्रों में 14,460 परिवार रहते हैं, जिनमें से 1,860 रैयत और करीब 12,500 परिवार अवैध कब्जेधारी हैं। इन्हें शिफ्ट करने की जिम्मेवारी BCCL और झरिया पुनर्वास तथा विकास प्राधिकार को दी गई है। रेल मंत्रालय जल्द ही पटना और देवघर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाएगी। इससे बाबाधाम आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
पटना से देवघर के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इससे देवघर आना और जाना काफी आसान हो जाएगा। भागलपुर के रास्ते सुल्तानगंज के बाद आने वाली यह ट्रेन देवघर पहुंचेगी। देवघर के लिए ये ट्रेन काफी सुविधाजनक मानी जा रही है। देवघर में यह ट्रेन 3 घंटे के बाद फिर से वापसी करेगी, यानी सुल्तानगंज से आए श्रद्धालु देवघर में 3 घंटे के अंदर बाबा मंदिर में पूजा पाठ कर वापस फिर हो सकेंगे। इससे देवघर की कनेक्टिविटी में और बेहतर सुधार होगी। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। आशीष कुमार अंबस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया है। लगातार दूसरे रविवार को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। बोकारो के अतिरिक्त चंद्रपुरा और बेरमो के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची के खलारी थाना क्षेत्र स्थित निर्मल महतो चौक के पास आज अहले सुबह हथियारबंद बदमाशों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे 3 हाइवा को आग के हवाले कर दिया है। इस दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से 3-4 राउंड फायरिंग भी की। घटना की जानकारी मिलते ही खलारी, मैकलुस्की गंज और पिपरवार पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा टल गया। हिंडालको कंपनी का बॉक्साइट लेकर बगड़ू माइंस से चली लगभग 12 रोपवे ट्रॉली रिहायशी इलाकों में टूटकर गिर गई। ट्रॉली गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रविवार का दिन होने से इलाके में आवाजाही कम थी, जिससे जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।